मङ्गना व्रज जनरञ्जना जसदानन्दना व्रज जनरञ्जना जसदानन्दना व्रज जनरञ्जना जसदानन्दना व्रज जनरञ्जना ओ जसदानन्दना व्रज जनरञ्जना जसदानन्दना व्रज जनरञ्जना यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango. Nitai Gaurango, bolo Nitai Gaurango. Nitai Gaurango, Gaur Hari. Nitai Gaurango, Gaur Hari. Nitai Gaurango, Gaur Hari. Jay Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe. Jay Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe. Jay Jagannath, Jagannath, Baladeva, Jay Subhadra. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada.
Jaya Vishnupada Paramahansa Paribhraja Vicharya Ashtakra Sata Sivatti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jai Vishnupada Paramahansa Paribhrajacharya Ashtatara Satesi Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Maharaj Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Shri Radha Giridhari Bhagavan Ki Jai Jagannath Baladev Subhadra Ji Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Srila Prabhupada Ki Nitai Gaur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tata Jayad Mudiraye Nashtapraye Subhadrisu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasluke Bhaktir Bhavati Naishtakim. Srimad Bhavatam, Canto 9, Adhyaya 6, Slok 48. Evam Gruhesu Abhirata Visayan Vividhe Sukhe Visayan Vividhe Sukhe Sevaman na cha anusyata Ag आज्य सौतके ईवानल एवं गृहेषु अभिरत विषयान विविधे सुखे सेवमान न च अतुष्यत आज्य सौतके इव नल एवं गृहेषु अभिरत विषयान विविधे सुखे सेवमान न च अतुष्य आज्य सौतके इव नल बोलिए कोई बोलो जी विषयां विषय अभिरत विषयान विविधे सुखे सेवमान च अनुष्यत एवं शब्दार्थ ऐसे हैं एवं इस प्रकार गृहेषु घरेलू कार्य में अभिरत सदैव व्यस्त विषयं भौतिक साज सामग्री विविधे नाना प्रकार के सुखे सुख से सेवमान सेवित होकर न नहीं च भी अतुष्य संतुष्ट हुआ आज्य सौतके घी के बूंदों से इव सदृश अनल अग्नि ट्रांसलेशन तात्पर्य है डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की ट्रांसलेशन। इस प्रकार सबरी मुनि इस भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति करते रहे किंतु वह तनिक भी संतुष्ट नहीं थे। जिस प्रकार निरंतर घी के बूंदे पाते रहने से अग्नि कभी जलना बंद नहीं करती, तात्पर्य भौतिक इच्छा जलने वाली आग की समान है। यदि आग आग को निरंतर घी की बूंदे मिलती रहें तो आग बढ़ती ही जाएगी, यह कभी बुझेगी नहीं। अतः भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते चलने की नीति से सफलता मिलने वाली नहीं है। आधुनिक सभ्यता में हर व्यक्ति आर्थिक विकास में लगा हुआ है, जो भौतिक अग्नि को निरंतर घी की बूंदे प्रदान करने के तुल्य है। पाश्चात्य देश भौतिक सभ्यता की पराकाष्ठा प्राप्त कर चुके हैं, किंतु तो भी लोग असंतुष्ट है। असली संतोष तो कृष्ण भावना मृत में है, इसकी पुष्टि भगवद्गीता में 5:29 जहाँ कृष्ण ये कहते हैं, भक्ताराम एक तपसंग सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वामांग शांति मृच्छति। साधुजन मुझे समस्त यज्ञ तपस्याओं का चरम लक्ष्य, समस्त लोकों तथा देवताओं का परम प्रभु एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितोषी जानकर भौतिक कष्टों से शांति प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें और अनुष्ठान पूर्वक कृष्ण भावनामृत में प्रगति करें, तभी मनुष्य को शांति तथा ज्ञानमय नित्य आनंद पूर्ण जीवन प्राप्त हो सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सहग्रजातं सगण रघुनाथ नितं तं सजीवम् साधयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता शिविशाखानितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ पर सौवरी मुनि के जो प्रसंग है, खास करके भक्तों के लिए बहुत एक शिक्षाप्रद है। भक्ति मार्ग में जो सबसे अड़चन है, बाधक है, वो हमारे भौतिक इच्छाएं। जब तक जीव के भीतर भौतिक इच्छा रहती है, तो भक्ति के नाम निशान उनके हृदय में अंकुरित नहीं हो पाती। तो भक्ति के बीज तभी हमारे हृदय खेती में फैलती है, बढ़ती है, जब हमें भौतिक इच्छा को रोक देते हैं। जब तक भौतिक इच्छा को आने में हमें समर्थ नहीं हो पाते, जब तक भौतिक इच्छा को हमारे भीतर आने का दरवाजा को बंद नहीं कर देते हैं, जब तक ये मन भगवान के चरण के प्रति आसक्त नहीं होता। क्योंकि विषय और आश्रय वो दोनों एक साथ में नहीं होते। जहाँ पर विषय है वहाँ पर कोई व्यक्ति आश्रय नहीं ले सकता। आश्रय तभी लेगा जो विषय को छोड़ता है। तो यहाँ पर सबरी मुनि के पतन इस प्रकार का हुआ। यहाँ पर दिखा जाती है कि किस प्रकार एक महान योगी अपने स्थिति से च्युत होते हैं और गृहस्थी को बहुत बड़ा सुख मान रहे हैं। एक महान गृहस्थ साथ साथ भी एक महान योगी भी तो गृहस्थ जीवन किस प्रकार मरणांतक यंत्रणा है, अपने खुद अपने व्यक्तिगत अनुभव को यहाँ पर सबरी मुनि कह रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं, हाँ कैसे मेरा तपस्या का जीवन था और ये गृहस्थ जीवन, और बड़े ही विचलित हो जाते हैं। तो ऐसे है सबरी मुनि, यदियों एक विचिक्षण बहुत शक्तिशाली योगी थे और उनके पास इतने योग शक्ति थी और इतने अपने योग शक्ति के द्वारा वो पानी के भीतर, यमुना पानी के भीतर प्रवेश करने की वो शक्ति रखे थे, योग शक्ति के द्वारा वो पानी के भीतर बैठकर वो तप कर रहे थे। वहाँ पर उनका काम की प्रभाव होने के कारण वहाँ पर उनका स्खलन होती है, उनका तपस्या भग्न होती है, वो तपस्या को छोड़ देते हैं और आकर के एक नहीं दो नहीं मानधाता राजा के 50-50 स्त्रियों के साथ, 50 कन्याओं के साथ उनका विवाह होती है। तो यहाँ पर प्रमाणित हो जाता है, चाहे वो कैसे भी स्तर में हो, जैसे वो चैतन्य महाप्रभु भी रोकते हैं, वो बात को बड़े ही कठोर के साथ बताते हैं, वैष्णव खास करके भक्ति मार्ग में प्रगति करना है तो ये जो स्त्री और स्त्री संगी, ये दोनों को, दोनों से बचना है। भले वो, क्योंकि ये स्वभाव प्रत्येक जीव में पाई जाती है, चाहे वो नीचे हो ऊपर, ब्रह्मा से लेकर मल में रहने वाला कीड़ा, यही स्वभाव में वो लगी रहती है। श्री श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्रील प्रभुपाद की, नितायगोर प्रेमानंदे। तो ब्रह्मा से लेकर मल में रहने वाला कीड़ा तक भी वो विषय अभिनिविष्ट है, विषय में एक प्रकार का सुख आनंद उठाने के लिए अनबरत, खाली इसी जन्म ने अनादिकाल से अनादि कर्म फले पड़ी भवान नव जले तारीवारे ना देखी उपाय, विषय सुख के पीछे दौड़ दौड़ कर वो अपने को उधार करने की रास्ता देख नहीं पा रहे हैं कि विषय ऐसा भौतिक सुख इस प्रकार का ऐसे मतलब बाधक चीज है जो हमारा जीवन को, आध्यात्मिक जीवन का प्रगति को रोक देती है। तो यहाँ पर यही बात दिखा जा रहा है। तो भले एक के व्यक्ति योग मार्ग में कितना भी पटु हो, दक्ष हो, जब तक भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के प्रति आकर्षित नहीं होता, जब तक भगवान के प्रति आकर्षित आकर्षण उत्पन्न नहीं कर लेता, तब तक ये तथाकथित योग पद्धति उनका जीवन के, जीवन को मदद करने के लिए उनका जीवन का सहायक नहीं बन सकता। भले वो कितने अष्टांग योग में बड़े धुरंधर हो, कितने योग प्रोसेस योग पद्धति के द्वारा अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए कोशिश करे, क्योंकि जब तक ये व्यक्ति भक्ति नहीं करता तब तक योग मार्ग से उनको कुछ सहाज्य मदद नहीं मिल सकती। तो ये स्पष्ट, ये इतने बड़े योगी के जीवन के उदाहरण से हमें पाई जाती है। तो भक्ति जो एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है हमारे जीवन का, जीवन को उधार करने के लिए, तो सबरी मुनि का योग पद ये जीवन से हमें दिख जाती है। तो आज के समय में बड़े बड़े योग सेंटर खुल जाती है और लोग ये पतिंगा के जैसे ये योग सेंटर में जाना चाहते हैं, भक्ति मार्ग को अपनाना रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान भी कहते हैं बहुनाम, अनेक अनेक जन्म के बाद एक व्यक्ति भक्ति के प्रति भक्ति के ओर मुंह मोड़ता है। तो आज के समय में देखा जाता है बहुत बड़े बड़े योग सेंटर है और लोग 10-15 मिनट के लिए 15,000-20,000-30,000 ऐसे दे करके उसके भीतर जाते हैं और सीखते हैं क्या पता नहीं, जाते हैं इतने पैसा दे के लेकिन उनके भीतर जाकर के क्या सीखते हैं ये बात पता नहीं है। तो एक बार ऐसे ये एक व्यक्ति गया योग सीखने के लिए योग सेंटर में, जब गया उनके भीतर जो योग के जो प्रोफेसर टीचर लोग थे सिखाने वाले, तो उनको कुछ योग प्रोसेस बताएं और उनको बैठा दिए और वो व्यक्ति ऐसे बैठ गया, बैठ करके योग साधना ध्यान लगाया। तो उनका ध्यान छूटने के बाद, तो ध्यानस्थ से वो आने के बाद तो उनको पूछा गया, तो आप ध्यान में क्या देख रहे थे, क्या चिंतन क्या आ रहा, आपका ध्यान में क्या सब चीज आ रहे थे। तो व्यक्ति बोला मेरे ध्यान में मैं जब ध्यान कर रहा था तो मेरे ध्यान में मेरा खेती को कैसे पानी बढ़ाना यही चीज मेरा ध्यान में आ रहा था। तो ये है आजकल के योग पद्धति है, क्योंकि ध्यान नहीं हो सकती है। भक्ति जितने आसान है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भले योग मार्ग बहुत कष्ट है,
क्योंकि यज्ञ मार्ग में कुछ जब ऐश्वर्य प्राप्त होती है योगी को, ये ऐश्वर्य में वो मोहित हो जाता है कि भक्ति भगवान के सच्चित आनंदमय विग्रह के प्रति आकर्षित होने के कारण वो ऐश्वर्य के ऐश्वर्य को तुच्छ मानता है। भले योगियों को जो ऐश्वर्य प्राप्त होती है वो कई गुना आगे सुदामा को, सुदामा ठुकरा रहे थे ये क्या नाम हमारे जो आचार्य रूप गोस्वामी ऐसे पैर में ऐसे फेंक दिए, परसमणि जब आया तो रूप गोस्वामी ने पैर में उठा करके फेंक रहे थे, बार बार वो स्पर्शमणि आकर के सना रूप गोस्वामी के चरण में पहुंच रहा था। सुदामा ने ऐश्वर्य को ठुकरा रहे थे और बड़े खुश हुए थे कि भगवान जानबूझ करके ये भौतिक जो ऐश्वर्य मुझे प्रदान नहीं किया, कहा है हो सके मैं उनका भक्ति से च्युत हो जाऊं, तो ये सोच कर वो बड़े प्रसन्नता अनुभव किए, रास्ते में आते समय प्रसन्न खुश हुए, तो अच्छा हुआ भगवान ने मुझे ये भौतिक ऐश्वर्य से वंचित किए हैं। यदि कोई व्यक्ति के पास, कोई भक्त के पास ऐसे कुछ ऐश्वर्य नहीं है तो अच्छी बात है, यदि कोई भक्त ऐसे देखने में सुंदर नहीं है कि उनके भीतर कुछ गुण नहीं है तो अच्छी बात है, यदि भक्ति सीधा है उनको मोड़ तोड़ करना तो फिर वो मोड़ तोड़ जाएगा। तो यदि कोई आसानी से भक्ति करना चाहता है, प्रभुपाद जी जो उनके ये संस्था में जो प्रोसेस बताए तो आसानी से सरल तरीका से करे वो भक्ति प्राप्त कर लेगा। तो मैं कह रहा था तो हाँ, और प्रभुपाद जी भगवद गीता में भी बात को बताते हैं योग क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस पर्सन इज रियल योगी, योगी कौन है ये बात को प्रभुपाद जी भी बताते हैं। एक प्रकृत योगी कौन है, ना जो कृष्ण चेतना में है, जो व्यक्ति कृष्ण चेतना में है वही व्यक्ति ही प्रकृत योगी है। और कलियुग में खास करके हरे कृष्ण मंत्र जप करना ये वास्तविक योग है, और हरे कृष्ण मंत्र छोड़कर और जो हमें उपाय मनाते हैं ये योग के तथा ये योग के नाम पर एक प्रकार का भोग है। योग भले दिखता है लेकिन योग के नाम पर एक प्रकार की भोग है। तो और एक बात ये प्रसंग के द्वारा हमें पता चलती है कि सौवर्य मुनि ने बड़े बहुत बड़े योगी थे और अपने योग शक्ति को इस्तेमाल करके अपने को एकदम देखने के लायक नहीं थे, सौवर्य मुनि देखने के लायक नहीं थे, लेकिन अपने योग शक्ति के द्वारा वो ऐसे अपने को सुंदर बना लिए, उसके साथ साथ बहुत आलिशान बंगला बना लिए और बंगला के भीतर बहुत सारे वस्तु रख लिए और 50-50 पत्नियां हैं और फिर कई समय तक वो उसके भीतर भोग करने लगे। तो अंतिम में वो प्रमाण देते हैं और भगवान भी ये बात को बताते हैं, नतेषु रमते बुधा जे ही संस्पर्शदा भोगा दुख योनये बते आद्यंत बंद कौंते नतेषु बुद्धिमान, बुधा शब्द का अर्थ बुद्धिमान व्यक्ति इसमें रमण नहीं करता, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ये भोग में आग्रह नहीं करता, ये बात को भी भगवान कहते हैं। और जितने में भौतिक सुख के प्रति भौतिक सुख के और आगे बढ़ेंगे उतने हमारे जीवन में दुख आने वाले हैं, भौतिक प्रगति एक प्रकार का धोखा है, एक चालबाजी है, तो जितने हमें उस क्षेत्र में बढ़ेंगे तो उतने हमारे जीवन में दुख आने वाला है। न जातु काम कामान उपभोगेन सायंगति और हबीसा किस्म वर्त इव भूय एव अभिवर्धते, जैसे आप आग में घी के बूंद डालोगे तो आग बुझने वाली नहीं है, वो और तेजी गति से और भयंकर होकर जलेगा, उनका दाहिका शक्ति और बढ़ने लगेगी, घी में ना आग में घी डालोगे और बढ़ेगी उनका जो प्रज्वल, उनका जो शक्ति है ताप शक्ति और बढ़ेगी। उसी प्रकार एक कामुक व्यक्ति, एक कामी व्यक्ति को आप ये संसार तीनों लोकों की भोग की पदार्थ दे दो उनका काम बुझने वाली नहीं है, क्योंकि काम कभी बुझती नहीं है, काम कभी शांत नहीं हो, कामी व्यक्ति कभी शांत नहीं होती है, काम कभी शांत हुआ अवस्था में देखा नहीं जाता है, काम एक बंदर जैसे है, कामी व्यक्ति एक बंदर जैसे, बंदर कहाँ रहता है जंगल में, लेकिन साथ साथ में कई सारे बंदरियों को लेकर के रहता है, तो ये कामी व्यक्ति ऐसा ही है, उनका मन में कभी शांति प्राप्त, उनको कभी कामी व्यक्ति को भी शांति प्राप्त हो ही नहीं सकता। ये संसार में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अर्थ कमाता है और जैसे वो अर्थ को अपने इंद्रिय अर्थ है जब अर्थ को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाता है तुरंत उनका पुरुषार्थ नष्ट हो जाती है, वो अपने पुरुषार्थ को खो देता है, अर्थ इंद्रिय अर्थ अभिध्यानम सर्व अर्थ अपह निरुणाम। सर्व अर्थ मतलब उनका पुरुषार्थ नष्ट हो जाती है, सर्व अर्थ अपह विनाश हो जाती है निरुणाम। भ्रंसितो ज्ञान विज्ञान एन आविशति मुख्यतम। और जैसे में इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो जहां पर इंद्रिय तृप्ति होती है वहां पर भक्ति टिकती नहीं है, वहां पर भक्ति भी अपने को प्रकाश नहीं करते हैं, वहां पर वो उसके हृदय में भगवान नांग प्रकाश्य, भगवान उसके हृदय में प्रकाश नहीं नहीं प्रकाशित नहीं होते। जो हृदय में काम है वहां पर प्रेम नहीं है, या काम या प्रेम। और जो हृदय में काम बसी रहती है वो हृदय में भक्ति नहीं उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए भगवान के नांग हृदयसु अर्जुन, लेकिन न प्रकाशित अर्जुन यदि कहते हैं भगवान हृदयसु लेकिन नांग प्रकाश्य। भक्ति के हृदय में अभी जो भक्त है उनके हृदय में भगवान तो दर्शन देते हैं। इस प्रकार ये सबरी मुनि के प्रसंग के द्वारा हमें बताना चाहते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, न जातु काम न अर्थ इंद्रिय अर्थ इंद्रिय अभिध्यानम। इसका नेक्स्ट लाइन, भ्रंसितो ज्ञान विज्ञान उनका भक्ति को काम नष्ट कर देती है। हम देखते हैं पहले समय हम देखे थे तो पहले समय में ऐसा हुआ था घर में फोन हुआ करता था, लेकिन आज के समय में वो घर फोन को घर से उठा करके अभी अपने पॉकेट में लेकर के घूम रहे हैं। घर से फोन को उठा करके अभी अभी पॉकेट में लेकर के घूम रहे हैं और उसके साथ वे टीवी भी लेकर घूम रहे हैं। तो ये ही भौतिक तथाकथित लोग कहते हैं भौतिक वर्तमान समाज भौतिक सभ्यता बहुत प्रगति, क्या प्रगति क्या है, प्रगति का अर्थ यही हुआ अच्छा खाना अच्छा सोना अच्छा रहना, यही वास्तविक प्रगति है। ये प्रगति नहीं है और अधोगति है। तो तथाकथित साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि वर्तमान सिविलाइज मॉडर्न सिविलाइजेशन बहुत आगे है, बहुत अग्रगति किया है। क्या अग्रगति क्या है, और कैसे आराम से रहें और अच्छे से खाएं और अच्छे से अच्छे इंद्रिय तृप्ति कैसे किया जाए, इसी को और बढ़ावा दिए हैं वर्तमान के ज्ञानी लोग। तथाकथित ज्ञानी लोग कैसे और अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति किया जाए उसको और सराहना किए। तो ये कहां, तो भाई पीछे जाओ देखो किस प्रकार का प्रगति ना किस प्रकार का सभ्यता थी। तो यहाँ पर का, और यदि हमें पूरा प्रमाण के रूप में देखेंगे पाश्चात्य देश को देखेंगे, पाश्चात्य देश इतने भौतिक प्रगति में आ गए हैं लेकिन आज वो लोग ड्रग्स ले रहे हैं नशा कर रहे हैं, वो भौतिक सुख से वो विचलित है। जो चीज से वो सुख ले रहे थे वो चीज उनको विचलित, उनका उनको ड्रग्स कराने के लिए बाध्य कर रहा है। आज अमेरिका में जाओगे देखोगे अमेरिका जैसे देश आज सारे विश्व में भौतिक प्रगति में नंबर वन है, लेकिन ऐसे जगह के लोग क्या कर रहे हैं वो चीज को भूलने के लिए आज नशा के आश्रय लिए हैं। तो ये है भौतिक प्रगति का तो विषय है। तो एक बार ऐसे जो ये जड़ कर्मी भौतिकवादी लोग और साइंटिस्ट लोग जो सब चीज बनाए वो चीजों को जब एक भक्त भगवान की सेवा में इस्तेमाल करता है तो भगवान का सेवा में आजकल के विज्ञानी लोग या भौतिकवादी लोग जो जो चीजों से बनाए वो चीजों को एक भक्त भगवान के सेवा में इस्तेमाल करके ऐसे लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। जैसे मान लो देखो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है बिजली है और ये फैन घूम रही है और यहाँ पर हम फैन के नीचे हमें आराम से बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं कि कुछ शांति है। जब फैन नहीं होता गर्म होता तो चिड़चिड़ापन आ जाता। तो ये बनाया कौन, जो इलेक्ट्रिसिटी है या फैन है या टेलीग्राफ है टेलीफोन है मोटर गाड़ी है रेलगाड़ी है बना, ये सब भक्त नहीं बनाया, बनाया भौतिकवादी। ये सब चीजों भक्त नहीं बनाया, बनाए ये लोग लेकिन फायदा ले रहे हैं भक्त लोग, बनाए उन्होंने लेकिन फायदा भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर। जैसे गाड़ी है भगवान के प्रचार में हमें लगाते हैं, मोबाइल है लेकिन यहां पर एक बात एक भक्त बता रहे थे तो मोबाइल है तो भक्त लोग कभी कभी सोचते हैं ये तो युक्त वैराग्य, कभी कभी हमें ऊपर से कहा जाता है मोबाइल मत रखो। एक बार हमारे आश्रम में भी सारे मोबाइल लेके चले गए थे बड़े बड़े भक्त लोग, सब ले लिए थे। तो क्योंकि कितना बड़ा क्षति पहुंचती है एक ब्रह्मचारी के जीवन में, खास करके देखा जाता है मोबाइल उनका आश्रम को चेंज कर दे परिवर्तन कर देता है बदला देता है। तो इसीलिए ऐसा हुआ था। तो हाँ मैं क्या कह रहा था कि क्या कह रहा था, हाँ युक्त वैराग्य, यस। हाँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भक्त लोग बहुत ये कर लेते हैं, हाँ ये तो युक्त वैराग्य है, लेकिन आखिर में नतीजा ये निकल रही है हमें युक्त हो जाते हैं, वैराग्य उड़ जाती है। ये दिखा जाती है कि युक्त हो जाते हैं हाँ तो वैराग्य उड़ जाती है। हाँ हाथ में न कान में, एक भक्त के ऐसे भी बता रहे थे, कान में मोबाइल, लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड में मोबाइल और राइट में जपमाला, हरे कृष्ण और ये लेफ्ट में नोकिया का फोन और ये हाथ में जपमाला कर रहे हैं, हाँ हरे कृष्ण नो नो किया, मतलब नो किया मतलब नहीं किया, जप कर रहा हूं और नोकिया भी कान में है, मतलब नहीं किया, नो किया मतलब नहीं किया, मैंने जप नहीं किया तो क्या कर रहे हो। तो ये ऐसे ये भौतिक ये सब वस्तु जो है हमारे जीवन में खास करके भक्ति के मार्ग में बहुत बड़े बाधक चीज है। तो ये भौतिकवादी लोगों का बनाए हुआ चीज को जब भक्त भगवान के सेवा में इस्तेमाल करता है और उनसे फायदा लेता है तो वो लोग नाक उठाते हैं, अरे बनाए हम लोग लेकिन भोग ये भक्त लोग कर रहे हैं, हमें बनाए लेकिन कितने मेहनत करके बनाते हैं, हाँ लेकिन भक्त लोग बड़े आसानी से वो चीज को भोग करते हैं, हाँ इसलिए वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। आज यदि भक्त लोग ये लोगों का बनाया हुआ चीज को भगवान के सेवा में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कामी लोग यूज करते हैं, तो कामी लोग जब यूज करेंगे व्यवहार करेंगे तो वो तो नरक जाएंगे और बनाने वाला भी नरक जाएगा। जेहेतु भक्त लोग ये विज्ञानियों का वस्तु को इस्तेमाल करते हैं भगवान का सेवा के लिए तो वो पुण्य का श्रेय वो लोगों के ऊपर भी जाता है, नरक से बचा लेते हैं, नरक से बच जाते हैं, ऐसे तो नरक से ये लोग बचते हैं, भक्त लोग बचा लेते हैं उनका बनाया हुआ चीज को भगवान का सेवा में लगा करके। तो ऐसा होता है कि सबरीमणि के प्रसंग से देखा जाता है, बहुत बढ़िया घर बना लिया और ये संसार में खास करके तरुण अवस्था में जब एक व्यक्ति सोचता है मेरा छोटा सा घर हो, बगल में एक सुंदर पत्नी हो, हाँ और एक जो घर बनाया घर के भीतर कुछ सुंदर वस्तु हो, हाँ और दो बच्चे हो, ऐसे अवस्था को खास करके एक व्यक्ति भौतिक भौतिक दिगों में देखेंगे, एक व्यक्ति ऐसा कहता है कि ये घर तो मेरा घर नहीं है, ये घर तो मेरा स्वर्ग है। हाँ तो वहां पर प्रहलाद महाराज कहते हैं ये अंधा कुआं है, जहां पर भौतिकवादी लोग कहते हैं ये घर मेरा घर नहीं है स्वर्ग है, वहां पर एक महाजन प्रहलाद महाराज कहते हैं ये अंधा कुआं है, गृह अंधकूप। हाँ तो ऐसे, और एक बार गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज लेक्चर दे रहे थे तो कुछ भक्त लोग सामने बैठे थे तो गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज कह दिए कि पायखाना में बैठ करके हरि भजन नहीं होती है, गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज बोल दिए कि पायखाना में बैठकर हरि भजन नहीं होती है। तो सामने बैठने वाले व्यक्ति भक्त लोग समझ नहीं पाए तो प्रश्न किए, जब समझ महाराज ऐसे क्या बोल रहे हो, तो गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज जवाब दिए जो जो घरों में खाने पीना और इंद्रिय तृप्ति की बातें चलती रहती है वो बाह्य दृष्टि से मंदिर के जैसे, वो घर बाह्य दृष्टि से मंदिर जैसे लगने के बाद भी वो साधु साधु वैष्णव का स्थान नहीं है। और बाह्य दृष्टि से एक व्यक्ति मंदिर में आकर के भजन करने के लिए स्वांग करे भी, यदि विषयी व्यक्ति तो कामी व्यक्ति मंदिर में आकर, जिसके भीतर विषयी व्यक्ति मंदिर में आकर के भजन करने की स्वांग करने के बाद, बाह्य दृष्टि से भजन की करने की स्वांग करने के बाद भी वो कहां पर रहता है, वो गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं वो विषय विष्टा कुंड में रहता है। और जो व्यक्ति निष्कपट भाव से अप्राकृत आश्रय विग्रह का सेवा में लगे रहता है वो कहीं पर भी रहे ना वो राधा कुंड में रहता है, ऐसे गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं। तो वर्तमान समय में खास करके एक इंसान, एक व्यक्ति अपने छोटे से घर, पत्नी बच्चे, कुछ थोड़ा सा वस्तु मिल जाए, बस बस हो गया, बस मेरा घर बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। और जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये बूढ़ों के साथ कौन रहेगा, तो बच्चे लोग आप रहो नहीं तो हम रहे, ये बूढ़ों के बूढ़े लोगों के साथ, सबके बात नहीं है, जो लोग ऐसा करते हैं तो ये बूढ़े लोगों के साथ कौन रहेगा, तो बच्चे लोग छोड़ के चले जाते हैं। जब बच्चे लोग घर छोड़ के चले जाते हैं तो बुढ़ा बुढ़ी जो घर स्वर्ग कहते हैं कह रहे थे वो घर उनको नरक की यंत्रणा देने लगती है। हाँ, वो समय जो वो टीवी के सहारा लेते हैं, टीवी से कुछ सुख लेंगे तो आंख को दिखता नहीं है, और कुछ खाने खाने में से सुख लेंगे कि सर्वरिमिन यही ये करने के लिए ही तो अपने योग्य तपस्या छोड़कर इतना बड़ा घर बना दिया ना, घर बसाया ना, लेकिन प्रमाणित होता है आखिर में अपने सर में हाथ देख करके बैठ रहे हैं, तो ये चीज सुख देने वाला नहीं है, दे ही नहीं, ये तो ये भी खुद ही कह रहे हैं। हाँ, तो ये व्यक्ति खाने से जब सुख लेना चाहता है तो पचन नहीं होती है, और कोई सुनने के लिए जब इच्छा करता है तो कान में श्रवण शक्ति नहीं रहती है। हाँ, तो इसीलिए भगवान कहते हैं धीरस्तत्र न मुह्यति। और ये भी देखा जाता है, हमें कभी कभी सड़क में जाते हैं तो रास्ता के साइड में देखा जाता है पोस्टर लगाया जाता है, एक घर बनाया जाता है और एक पुरुष और स्त्री का फोटो वहां पर चिपकाया जाता है, और पीछे साइड से दो गोल गोल बच्चे वो कंधे से सवार हुए रहते हैं। हाँ, और एक बगल में एक बहुत बड़ा सुंदर घर की छवि लगी रहती है। हाँ, तो ऐसे ऐसे घर को वहां पर लिखा जाता है घर हो तो स्वर्ग, लिखा जाता है बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कि घर हो तो स्वर्ग, ये एकदम पागलपन है, ये एकदम पागलपन, बिल्कुल भौतिक जीवन एक प्रकार का पागलपन है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं धीरस तत्र न मोह्यति, ये सब चीजों के प्रति एक धीर व्यक्ति, हाँ ये सब देखने के बाद भी, खास करके भक्त ये सब चीजों को देखने के बाद भी इसमें मोहित नहीं होता, धीर व्यक्ति इसमें मोहित नहीं होता। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग भगवान के पास आते हैं, गुरु के पास आते हैं और जी भर के सेवा करते हैं, पूरा एकदम देखोगे हाँ ये कट्टर भक्त है गुरु के, ये कट्टर भक्त है भगवान के, पूरा एकदम तन मन लगा करके सेवा करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज कहते हैं ऐसे लोगों का सेवा सेवा जैसे दिखने के बाद भी, ऐसे लोगों का भक्ति भक्ति जैसे दिखने के बाद भी, ऐसे लोगों का सेवा ऐसे लोगों का भक्ति सालग्राम शिला में बादाम तोड़ने की जैसे ही है। तो ऐसे लोगों का भक्ति और ऐसे लोगों का सेवा सालग्राम में बादाम तोड़ने की जैसे ही है। मतलब सालग्राम में क्या होता है, तो वो लोग ये सालग्राम शिला को इस्तेमाल करके भोग करना चाहते हैं, ऐसे लोग सालग्राम शिला को इस्तेमाल व्यवहार करके वो इसमें बादाम तोड़ करके खाना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। तो सालग्राम शिला को एक सख्त मजबूत पत्थर जैसे समझते हैं। तो उसी प्रकार तो ये भौतिकवादी लोग, और ये बात हुआ था जब पितामह भीष्म मैदान में खड़े थे और दुर्योधन जब देखा पांडवों का शक्ति को और पितामह भीष्म के पास गया, और पितामह भीष्म एक कौन है, एक महाजनों में से एक है, तो दुर्योधन पितामह भीष्म को रक्षा करना चाहता था और सारे सैन्य को कह रहा था सब मिलकर के पितामह भीष्म को रक्षा सपोर्ट दो रक्षा करो उनको बचाओ। आजादी शास्त्र में कहा जाता है कि भगवान की सेवा अपेक्षा उनके भक्तों की सेवा बढ़ करके है, और यहां पर दुर्योधन यही बुद्धि किया था, लेकिन उनके विधि के बुद्धि के पीछे मकसद क्या था ना, ये दुर्योधन पितामह भीष्म को इस्तेमाल करके मैं ये पांडवों को कैसे मैं सताऊं, पांडवों के ऊपर जीत करके मैं अकेले हस्तिनापुर सिंहासन को भोग करूं। जदियो पितामह भीष्म जानता था, वो जानता था ये भगवान के एक भक्त है, लेकिन भक्त को इस्तेमाल करके अपने भोग इच्छा को पूरा करना ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा घातक चीज है। तो यही बुद्धि दुर्योधन ने कर रहा था, और प्रभुपाद जी भी ये बात को कह रहे थे कि मैं यदि प्यासा हूं और मैं ठंडा एक गिलास ठंडा पानी मांग रहा हूं, और कोई व्यक्ति ऐसा मन में सोचे अरे प्रभुपाद जी को ठंडा पानी पिलाना ये तो एक साधारण सेवा है, तो प्रभुपाद जी को गरम गरम दूध और उसमें बादाम पिस्ता डाला हुआ दूध गरम दूध पिलाना चाहिए, तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो ये व्यक्ति मेरा सेवा नहीं कर रहा है, वो अपने मन की सेवा कर रहा है। तो इस प्रकार बुद्धि के द्वारा अपने जो भीतर जो छुपी हुई काम वासनाएं को तृप्त कर लेना, इच्छा को पूरा कर लेना, ये भक्ति जैसे दिखे तो ये वास्तविक भक्ति नहीं है ये बात को। और हमें देखते हैं क्या नाम उनका, रावण ने रावण ने ये भौतिक जगत से एक सीढ़ी बांधा था स्वर्ग तक, मन में बांधा नहीं था, ऐसे कल्पना कर रहा था मैं ये भौतिक जगत से स्वर्ग को एक सीढ़ी बांधूंगा और ये भौतिक जगत में जितने लोग हैं मैं सबको स्वर्ग ले जाऊंगा। तो तथा कथित वर्तमान जो साइंटिस्ट लोग है इसी प्रकार का मनोकल्पी कल्पना करते हैं। हाँ, तो आखिर में क्या होता है, अरे वो लोग जाकर डॉक्टर प्लीज और कुछ दिन मुझे बचा दीजिए, जिला दीजिए, मुझे बहुत कुछ करना है। जब ऐसे जो वर्तमान के साइंटिस्ट विज्ञानी लोग ऐसे कल्पना करते हैं और अचानक काल आ जाता है, मृत्यु आ जाता है, तो ऐसे लोग डॉक्टर डॉक्टर प्लीज मुझे और कुछ दिन, बस और कुछ दिन मुझे बचा जिला दीजिए, हाँ मुझे बहुत कुछ करना है। तो डॉक्टर क्या बोलता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि भौतिक इच्छा जो है एक प्रकार मृत्यु को मृत्यु का रूप लेकर के जीव के पास पहुंचता है। ये भौतिक इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति के सुख जो है एक प्रकार का मृत्यु का रूप, काल के रूप बना करके हमारे पास पहुंच जाता है। तथा कथित इंद्रिय तृप्ति भौतिकता में ग्रस्त पागल लोग पागल बन चुके हैं, ऐसे लोग कि सहज बद्धजीव का इंद्रिय तृप्ति की ओर झुके रहता है, सहज जितने जल्दी वो आकृष्ट सहज वो इंद्रिय तृप्ति की ओर आकृष्ट हो जाता है। तो जितना तथा कथित समाज के लोग जितने इंद्रिय इतने इतने इंद्रिय तृप्ति में पागल बन चुके हैं वो प्रकृति के ऊपर अकथनीय अत्याचार कर रहे हैं। इसीलिए पृथ्वी महाराज के समय में धरती उपज देना बंद कर दी, क्योंकि वो समय जनसंख्या बढ़ना बहुत भारी बात नहीं है, जन लोग का संख्या बढ़े ये भारी बात नहीं है, भारी बात यह है जब लोग भक्ति नहीं करते हैं। जब लोग भक्ति नहीं करते हैं तो धरती उपज देना बंद कर देती है, लेकिन जैसे पृथ्वी महाराज आए फिर वही धरती ने सबको देना शुरू कर दी, कि पृथ्वी महाराज भगवान के भक्त थे और उनके राज के समय सारे प्रजा भी भक्ति में लगे। हाँ, तो भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब प्रभुपाद जी भी एक बार कहे थे वर्तमान के जो, और हमें ये भी देखते हैं, हाँ तो लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं वर्तमान समय में, तो वो गाय को कतलखाना में भेजते हैं और जो गाय का गोबर है, पहले हमें देखे थे गाय का गोबर गोबर को लेकर के खेती में डाल दो और ऐसे आप कुछ बीज फेंक करके आ जाओ तो और मत जाओ और लास्ट में आखिर समय में जाओ उनको अमल करने के लिए। लेकिन वर्तमान इतने विज्ञान इतने बढ़ गया और विज्ञान पद्धति के द्वारा वो खेती करना चाहते हैं, हाँ तो आज के समय में अमेरिका में हजारों हजारों एकड़ जमीन बंजर भूमि बन गई है और हमें रातारात दो अंगुली लकी को दो हाथ बनाना चाहते हैं, रातारात ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं दो अंगुली लकी को सुबह होते होते दो हाथ बना देते हैं। तो एकदम ही प्रकृति का नियम का एकदम बहुत बड़ा विरोध है, प्रकृति का क्रिया जो स्वाभाविक वो होना नहीं देते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो आधुनिक सभ्यता है, लोगों को एक प्रकार का पंगु बना दिया है। पहले हम देखें कि गांव के लोग अपने हाथ में खेती करता था, अपने हाथ में वो हल चलाता था, लेकिन अभी गांव गांव में इतना बड़े बड़े ट्रैक्टर बन गया, एक एक ट्रैक्टर 10-15 लोगों का काम कर रहा है। और ये जब एक ट्रैक्टर 10-15 लोगों का काम करता है तो ये 10-15 लोग यहां पर बेकार हो गए ना, तो उनके हाथ में उनके पास कुछ काम नहीं रहा, वो सारे सारे शहर की ओर दौड़ते हैं और शहर में आकर क्या सीखते हैं, शहर में आकर सीखते क्या है। तो ये है वर्तमान। और इसीलिए आज के प्रसंग के द्वारा कहा जाता है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी बताते हैं, कृष्ण भावना में प्रगति किया जाए, भगवान के भक्ति किया जाए, तब हमें भक्ति से ही भौतिक इच्छा को रोका जा सकता है। जो हमारे अनादि अनादि जीवनों से जो हमें भौतिक इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त है, ये उस तभी रोक सकते हैं जब हमें भगवान के भक्ति करेंगे। और खास करके कलि युग में भक्ति क्या है, भगवान का नाम, भगवान का नाम लेना कलि युग में भक्ति है। और ये भगवान का नाम जो है खास करके कलि युग में नहीं, ऐसे सब युग में शक्तिशाली है और कलि युग में तो विशेष शक्तिशाली है। निसम्य हरि कीर्तन, निसम्य शब्द का अर्थ है सुना क्या ना हरि कीर्तन, म्रियमाणस्य मुखस्य, मरने वाला म्रियमाण से, मतलब मरने वाला व्यक्ति, म्रियमाण से मुखस्य, मरने वाला व्यक्ति के मुख से जब हरि कीर्तन निसम्य मतलब सुना, कौन सुने ना, भगवान के भक्त लोग, जैसे भगवान के भक्त लोग सुने तो सहस विष्णुदूत सहसा आपतन, अजामिल के जीवन से हमें देखते हैं, विष्णुदूत निसम्य, अजामिल मर रहा था, अजामिल मरते समय म्रियमाणस्य मुखस्य, मरने वाला व्यक्ति के मुख से जब निसम्य सुने हरि कीर्तन, सहसा विष्णुदूत आपतन, विष्णुदूत वहां पर सहसा तुरंत आकर के पहुंच गए। और ये बात को परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कर देते हैं, नाना उग्र यातनान, ये वर्तमान समय में लोग इतने पाप कार्य में लगे हुए हैं, तो वो लोगों को, और पाप करेंगे तो नरक जाएंगे, और ये लोगों को नरक जाने में से कैसे बचाया जाए, और जाने न दे, नरक जाने न दे, उसका उपाय का समाधान क्या है? और यही उपाय को श्रील सुखदेव गोस्वामी बाजी अजामिल जीवन का दृष्टांत को देख करके बताते हैं कि अजामिल किस प्रकार अंत समय में नारायण बोला, भगवान का नाम लिया और नरक जाने से जमराज के दूतों के हाथों से उनको बचाया गया, बच गया। जैसे अजामिल उनका लाइफ हिस्ट्री देखेंगे, जीवन इतिहास को देखेंगे, क्या क्या घिनौने कार्य नहीं किया था, लेकिन अंतिम आखिर में हुआ क्या, आखिर में जेहू भगवान का नाम लिया तो जमराज के दूतों के हाथ से बच गया ना, नरक नरक जाने में से बच गया ना। यही बात को श्रीमद भागवतम भी बताता है कि सकृत मन कृष्ण के, सकृत मन कृष्ण पदार बिंदयो तत् गुण निवेशितम तत् गुणराग यथाई, केवल एक बार जब हमारे मन कृष्ण में, कृष्ण के चरण में आकर्षित हो जाता है, और एक बार जैसे हमारा मन कृष्ण की लीला के प्रति आकर्षित हो जाता है, तो न ते यमपास भृतं तत् भटान, वो व्यक्ति स्वप्न में भी जमराज का दूतों को दर्शन नहीं करता, ऐसे सामने सामने तो छोड़ दीजिए, सब एक बार, देखिए केवल एक बार। और श्रीमद भागवतम कह रहा है, श्रीमद भागवतम कह रहा है केवल एक बार जो व्यक्ति का मन कृष्ण में, कृष्ण के चरण में चला जाता और उनके लीला के प्रति आकर्षित हो जाता, तो सब न ते यमपास भृतन, यमपास यमराज के दूत जब आते हैं बहुत बड़े सख्त रस्सी लेकर के आते हैं, और सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं न ते यमपास भृतन तत् भटान, हाँ वो व्यक्ति जमराज के दूतों को नहीं देखे, सपने अपि पश्यति, स्वप्न में भी, पश्यति मतलब देखेगा, स्वप्न में भी देखता देखता नहीं है। और यही बात को कुंती महारानी प्रार्थना करती है, हे प्रभु हाँ कृपा करके ये पांडव और वृष्णि वंश, ये दोनों वंश में मेरा जो स्नेह लगी हुई है उसको आप काट दो, स्नेह पास इमं छिंदिंग, ये जो स्नेह कि भौतिक संसार में आसक्ति जब तक है तब भगवान के प्रति हमें आसक्त नहीं हो सकते। तो यही बात को कुंती महारानी कहती है कि स्नेह पास इमं छिंदिंग, पांडव और वृष्णि वंश और पांडव वंश में मेरा जो लगाव है ये इमं छिंदिंग, उनको काट दो, उसको काट दो। हाँ तो ये बातों में हमें यही, आज के प्रसंग के समय भी हो गया, तो ये बातों से हमें यही सीखना है। हाँ तो सबरी मुनि इतने बड़े योगी थे, हाँ भले कितने योग साधना कर लें लेकिन भक्ति मार्ग में वो मदद नहीं कर सकता, तो ये बात को जान करके हमें भक्ति में हमें लगे रहना है। और सबरी मुनि आखिर में ये निर्णय देते हैं, देखो भौतिक जीवन में कितने भी प्रगति किया जाए हाँ तो उसमें कुछ सुख नहीं है, तो इसमें कोई खास करके भक्तों को इसमें कोई स्पृहा आग्रह नहीं दिखाना चाहिए और भक्ति में मन को लगाना चाहिए। यही प्रसंग के द्वारा थोड़ा जो बताया गया तो मुझे जो आया हमें बताया, तो हमें आज के चर्चा के द्वारा यदि इतने ही हमें सीखेंगे, भक्ति मार्ग में यदि बढ़ना है तो भौतिक को छोड़ना है, भक्ति करना है तो भौतिक चीजों को छोड़ना है, तभी हमें भक्ति कर सकते हैं। तो यही इतना ही सीखेंगे तो निश्चित हमें आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर पाएंगे। हरे कृष्ण। यानी कुछ प्रश्न है किसी का, कुछ एनी कमेंट्स? श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।